శలాకయా చక్షుః మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురుః శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురుం వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహ గణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సహ గణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితం నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిని తినామ. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశితారే. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాదేవ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే. ఇసమే శ్లోక్ తక్ కియా థా కెంటో 1 చాప్టర్ 5 టెక్స్ట్ 10. దసమే శ్లోక్ మే నారద ముని బతా రహే థే కి ऐसा साहित्य जिसमें भगवान की गुणगान नहीं किया गया है वो साहित्य तद्वायसम तीर्थम उसंत स्थान के समान होता है. और जो परमहंस हैं भगवान के भक्त हैं वो उस स्थान पे कोई आनंद ग्रहण नहीं करते. तो उसके बाद 11 श्लोक से आज चालू करना था. 11वां श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद का. తద్వాగ్ విసర్గో జనతాగ విప్లవ్లోకమబద్ధవత్యపి నామాన్యనంతస్య యశోంకితాని యత్ శృణ్వంతి గాయంతి గృణంతి సాధవ. ये श्लोक आप श्रीमद भागवतम पढ़ेंगे अगर आपके पास हार्ड कॉपी है पुस्तक तो उसमें ऑलमोस्ट हर पुस्तक में प्रभुपाद जी ने ये श्लोक लिखा है. शुरू में जो प्रीफेस आता है उसमें इस श्लोक को प्रभुपाद जी कोट करते हैं. तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है. इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ऐसा साहित्य जिसमें भगवान के गुणों का गान किया गया है, श्लोक भगवान के जो अनंत गुण हैं उनका गान किया गया है, ऐसा साहित्य अगर उसमें थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक या कुछ कुछ ऐसी एडिटोरियल मिस्टेक हो तो भी सारे साधु उसको स्वीकार करते हैं और उसका पठन करते हैं, गुणगान करते हैं. दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है. ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं. श्रृणवंती गायंती गृणंती. श्रृणवंती मतलब सुनते हैं, गायंती मतलब गाते हैं, गृणंती मतलब स्वीकार करते हैं. तो इसका तात्पर्य बहुत ही अच्छा तात्पर्य है. श्रीमद् भागवतम का वन ऑफ द बेस्ट तात्पर्य है इसमें और लंबा तात्पर्य भी है. तो इसमें आता है महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में भी श्रेष्ठतम को ढूंढ निकालते हैं. ऐसे चिंतकों को हंस कहा जाता है. हंस का जो लक्षण होता है, दूध और जल को अगर आप मिला के रख देंगे तो हंस दूध निकाल लेता है, जल को उसमें ही रहने देता है. तो महान चिंतक हंस कहलाते हैं, उनकी ये विशेषता होती है. कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले और अछूत से या अछूत कुल से संबद्ध शिक्षक से भी सद उपदेश प्राप्त करे. ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है. ये जो श्लोक इसमें बताया है ये चाणक्य के नीति शास्त्र में से आता है कि विष के कुंड में से भी अमृत स्वीकार कर सकते हैं, गंदगी में पड़े सोने को स्वीकार कर सकते हैं, अज्ञात कुल की उत्तम और सुयोग्य पत्नी को भी स्वीकार कर सकते हैं और अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति से भी सदुपदेश प्राप्त कर सकते हैं. ये कुछ कुछ शिक्षाएं हैं जो हर जगह पे लागू होती है, ये क्योंकि नीति शिक्षा है। चाणक्य पंडित ने भी इसके बारे में बताया था। तो ये एक एक संत सामान्य व्यक्ति से बहुत काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर की महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल जाता है। श्रीमद् भागवत में गोपियां भी प्रार्थना करती हैं इस प्रकार से कि जब भगवान के गुणों का जो गान करते हैं उससे संसार के मल का विनाश होते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम अभी भी ईढ़ कल्मषापः श्रवण मंगलम श्रीमद आततम भुवि गिणन्ति, ये भूत से आता है कि तब कथामृतम तप्त जीवन। इस संसार में जो लोग हैं वो तप्त हैं। तप्त मतलब जैसे मरुस्थल में रेगिस्तान में जाते हैं तो मिट्टी जो है जितनी तप्त होती है उतने इस संसार में लोगों का जीवन तप्त है। लगातार हम देख भी सकते हैं हर व्यक्ति क्लेश से परेशान है, किसी ना किसी क्लेश से व्यक्ति परेशान रहता है। और अगर खुद वो परेशान नहीं भी है तो भी उसको परेशान वाले करने वाले लोग रहते हैं। और इस तरह से एक शास्त्र में लिखा भी आता है कि इस संसार के जो संबंध हैं वो व्यक्ति को उसी तरह से चीट करते हैं, धोखा देते हैं, जैसे समुद्र, जैसे रेगिस्तान में अगर एक बूंद पानी किसी को दे दिया जाए या एक बूंद पानी अगर रेगिस्तान की जमीन पर डाल दिया जाए तो वो पानी जमीन पर पहुंचने के पहले ही सूख जाता है। इसी तरह से भौतिक संसार के संबंध है, चाहे कोई भी संबंध हम ले लें, वो संबंध स्थायी नहीं होते हैं, स्वार्थ पे आधारित होते हैं और व्यक्ति को पीड़ा प्रदान करते हैं। तो भगवान के नाम जो है वो तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी ईड़ितम, संसार के जो महान महान कवि हैं वो उसको श्रवण करते हैं, गाते हैं। कल्मषापहम, संसार के कल्मस का विनाश करते हैं। श्रवण मंगलम, जो उन नामों को सुनते हैं और उनको शुद्धता प्रदान होती है, सब शुभ लक्षण प्रदान होते हैं। श्रीमद आततम, और श्रीमत मतलब व्यक्ति को ऑस्पिशियसनेस और वैभव प्रदान करते हैं, और जो लोग इनका श्रवण करते हैं, प्रचार करते हैं, वो इस संसार के कलमस रूपी वातावरण को पवित्र करते हैं, जगत के दूषित वातावरण को बदलते हैं। श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। तो ये श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने के पहले लिखा था, 1962 का ये कमेंट्री है, क्योंकि 1962 में भारत और चीन का लड़ाई हुआ था, उस समय प्रभुपाद जी इस कमेंट्री को लिख रहे हैं। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांति पूर्वक रहते थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न नहीं था। चीन तथा भारत, ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे सामने भी सेम सिचुएशन है, भारत और चीन में युद्ध की अवस्था चल रही है, कुछ बहुत समय से टेंशन चल रहा है कि चीन अपनी सेनाएं बढ़ाता जा रहा है। वह उपाध्याय उसी को लिख रहे हैं कि पहले इस प्रकार से झगड़े नहीं होते थे क्योंकि लोग ईश्वर चेतना युक्त होते थे, सबको पता था कि ईश्वर सभी जमीन के मालिक हैं, सब वस्तुओं के मालिक हैं, तो लोग सारे देश भी ईश्वर से डरते थे और शुद्ध हृदय वाले लोग रहते थे, सरल लोग रहते थे। जैसे जैसे ईश्वरी चेतना लोगों के हृदय से जाती है वैसे वैसे पाप और कपट उनके हृदय में आता जाता है। तो संसार को अगर हमें फिर से सुधारना है तो हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वरी चेतना को विकसित करना होगा। तो प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कलह के युग, कली के थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है, यह किसी अन्य कारण से नहीं। अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार से भगवान के नाम को रोकने का प्रचार करते हैं। भारत में भी हम देखते हैं लेफ्टिस्ट मीडिया, बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप नहीं हो पाए। भारत को सेक्युलर देश भी घोषित कर दिया गया और बहुत गर्व के साथ बोलते हैं कि भारत सेक्युलर है। और ऐसे सेक्युलर देश में भगवान कृष्ण जहाँ पे जन्म अवतार लिए, राम जहाँ पे अवतार लिए, उनकी वाणी का प्रचार करना भी मुश्किल होता है। हम लोग भी जब कॉलेज में कभी जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, परमिशन मिलना मुश्किल होता है। लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम कैसे आध्यात्मिक चीजों पर हम नहीं बोलने देना चाहते हैं, आप आइए तो आप टाइम मैनेजमेंट पर बोलिए, बाकी गीता पे हम नहीं बोलने देंगे। तो ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भगवान कृष्ण के देश में भगवद गीता के ऊपर बोलने के लिए इतना कठिनाई होती। बड़े बड़े कॉलेज में आप जाइए तो बहुत मुश्किल होता है आध्यात्मिक सब्जेक्ट पे बोलना, कोई अलाउ नहीं करता है। सिस्टमेटिक रूप से भगवान का नाम और यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतः विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करें। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जो भी श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को पूरे विश्व में प्रचार करते हैं या कहीं भी अपने आसपास प्रचार करने की कोशिश करते हैं वो सभी जिम्मेदार भारतीय हैं। और अगर कोई श्रीमद् भागवत और आध्यात्मिक संदेशों को प्रचार नहीं करते हैं तो वो सारे भारतीय जिम्मेदार नहीं है, वो भारतीय सारे के सारे भारतीय वो गैर जिम्मेदार है। तो इस तरह से इसके आगे चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिकारों एवं नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। ऐसा लग रहा है प्रभुपाद अभी की बात लिख रहे हैं। जस्ट प्रभुपाद का संदेश इस प्रकार से है कि आप 100 साल, 500 साल, 1000 साल बाद कभी पढ़ेंगे सेम लगता है, क्योंकि भौतिक संसार हमेशा इस तरह से। जनता आधुनिक राजनीतिकार तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जनसामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः उत्थान करना के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सब प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय में यथेष्ट भाषा में विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता का विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान की महिमा गान करने के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद जी की पुस्तकें प्रभुपाद जी खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसमें हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुझे तो भाषा भी नहीं आती है, वो तो अंग्रेजी भाषा मैंने जितनी सीखी उतनी आती है, तो हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ उसमें गलती भी हो, एडिटोरियल मिस्टेक हो सकती है, व्याकरण की मिस्टेक, ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है, परंतु तब भी ये मैसेज इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग इसको स्वीकार करेंगे। और प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से चाहे वो विदेशी हों सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा ना जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं। और पढ़ो शिवंतु ये क्या हो रहा है, किस तरह से होता है?
हरे कृष्ण बाबू जी।
हाँ
जी, दिव्यमान वो हाईलाइट कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है।
दिव्यमान को आप हाईलाइट मत करिए, शिवंतु कुछ ऐसा सेटिंग होता है कि हम उसको रोक सकें, लॉक कर सकें?
स्क्रीन शेयर में ऑप्शन आता है वो हाईलाइट कर सकते हैं इसके लिए।
तो स्क्रीन शेयर आप सबका बाकी लोगों का बंद कर सकते हैं अगर आपका स्क्रीन शेयर चल रहा है तो, और बाकी का चलाने की आवश्यकता नहीं। एक सेटिंग ऐसा आता है स्क्रीन शेयर लॉक करने का, सभी लोग स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते, वो देखिए अगर वो ऑप्शन मिलता है तो। क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्ब होता है बार बार इस प्रकार से करने से। लो यदि श्रीमद भागवतम के दिव्य संदेश का विश्व के अग्रणी लोग कहाँ तक पहुंचे थे, हाँ, चाहे वो विदेशी हो, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं। अगर किसी के घर में आग लगती है तो वो बगल में कोई भी रहता है उसके पास जाके बोलते हैं, भले उसको भाषा नहीं समझ में आती हो, परंतु उस इमरजेंसी को देख के लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ कठिनाई है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं अभी वही इमरजेंसी है, हो सकता है मेरी भाषा इम्परफेक्ट हो, कुछ दोष हो, परंतु भगवत भक्ति का प्रचार बहुत इमरजेंसी है अभी। तो चाहे वो विदेशी हो, सहायता के लिए दौड़ जाते हैं, और वे बेचारे उनकी भाषा नहीं जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं, और पड़ोसी उसकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त ना हुए हों। श्रीमद भागवत के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसे ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ सकें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेक अनेक भौतिकतावादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इतने कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी तरह के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण ना जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि तो भी यह बाजार मिलता है क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद भागवत जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप बदलेंगे घटेंगे, अपितु यह उनकी उस चाह को सम्मिलित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। प्रारंभ में वे इसे पसंद ना भी करें क्योंकि जिसे पी लिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार भगवत गीता श्रीमद भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का कार्य करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वह अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद भागवत का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों ना हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद जी ने की है जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट। बहुत अच्छा तात्पर्य है, एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तात्पर्य है, इसमें अलग से एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में लिखा है मानव समाज की अवधारणा और कैसे अगर मानव समाज में शांति लाना है तो श्रीमद भागवत साहित्य का बहुत अधिक वितरण करना आवश्यक है। लोगों के घर में अगर श्रीमद भागवत पहुंचेगा, लोग श्रीमद भागवत का अध्ययन करेंगे तो समाज में विष खत्म हो जाएगी, जो भी समाज में विष चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद नारद मुनि और आगे बता रहे हैं कि सामान्य चीज तो दूर की बात है, इवन आत्म साक्षात्कार का ज्ञान भी अगर भक्ति से युक्त तो नहीं हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से बता रहे हैं कि सामान्य तो कर्म बहुत बहुत नीचे की बात है, आध्यात्मिक कार्य भी अगर भक्ति से रहित ना हो तो वो जीरो माना जाता है। नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वदभद्रम ईश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम, नैष्कर्म्यम मतलब ऐसा कार्य जो कि कर्म के बंधन से बाहर है, मतलब आत्म साक्षात्कार का कार्य, तो कोई नैष्कर्म्य है, परंतु अपि मतलब उसके बावजूद भी, अच्युत भाव वर्जितम मतलब भगवान की भक्ति से संबंधित नहीं है, भगवान का भाव उसमें नहीं है। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, वो जो है ज्ञान ज्ञान अमलम नहीं माना जाएगा और वो लोगों को शोभा प्रदान नहीं करेगा। कुतः पुनः शश्वत भद्रम ईश्वर। फिर उसके बाद उसकी बात ही क्या, सकाम कर्म की बात ही क्या, क्योंकि सकाम कर्म से तो कुछ आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं होता है। तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो, तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। इसका तात्पर्य जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भत्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भत्सना के योग्य है। यदि उपयुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भत्सना की जाती है तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए। श्रीमद भागवत में दसम स्कंध में दूसरे अध्याय में आता है कि जो लोग अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध है, जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान की शरण नहीं लेते हैं और वो सोचते हैं कि वो परफेक्ट हो गए हैं, केवल ब्रह्म को प्राप्त करके वो सोचते हैं परफेक्ट हो गए हैं और भगवान की शरण नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों को अविशुद्ध बुद्ध है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उनकी बुद्धि अशुद्ध है और वो उनका फिर से पतन हो जाता है, क्योंकि वो आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततम, परम पद से नीचे आ जाते हैं, पतन्ति अध अनादृत युष्मदंगे, क्योंकि उन्होंने हेलना की। तो इवन ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त होता है, जो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होता है, वो व्यक्ति भी पतित हो सकता है अगर वो भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं। तो वो नारद मुनि बता रहे हैं कि जब ब्रह्म का चिंतन भी जीरो हो सकता है तो फिर सकाम कर्म की क्या औकात है, सकाम कर्म का मतलब ही क्या है। ऐसे यदि उपयुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भत्सना की जा सकती है तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। ऐसे तार के ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। सकाम कर्म मतलब काम की इच्छा से, भोग की इच्छा से या फल की इच्छा से कार्य करना सकाम कर्म कहलाता है। तो सकाम कर्म तो प्रारंभ में हो सकता अच्छा हो, बाद में कष्टकर होता है। रजोगुण का जो रहता है, तमोगुण का जो होता है, वो शुरू में भी कष्टकर लास्ट में भी कष्ट होता है उससे। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता भगवान है और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो वह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। तो नारद मुनि के इन शिक्षाओं से समझ सकते हैं कि जब भी आध्यात्मिक गुरु शिष्य को समझाते हैं तो आध्यात्मिक गुरु हमेशा शिष्य के भले के लिए कई बार उसको स्ट्रांगली भी वस्तु में बताते हैं। स्ट्रांग मतलब हो सकता है शिष्य को उस समय खराब लगे, ठीक नहीं लगे, परंतु वो शिष्य के भले के लिए होता है। यहाँ पे नारद मुनि क्लियरली इनका व्यास देव की जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को क्लियरली नारद मुनि डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें इस प्रकार से नहीं बता रहे जैसे आजकल प्रभुपाद जी बताते थे कि जो पैसा दे के जो व्यक्ति गुरु बनते हैं ऐसे से मतलब होता है वो अपने शिष्य की गलती बताने से भी डरते हैं, इसको बताएंगे तो शायद डोनेशन कम कर देगा, परंतु ऐसे गुरु फिर कभी शिष्य का भला नहीं करते। और प्रभुपाद बोलते थे वो वास्तविकता में गुरु है ही नहीं, वो लोग जो हैं वो तो गुरु के नाम पे पाले हुए कुत्ते समान है। प्रभुपाद बोलते थे कि उनको तो जैसे कुत्ते को पाला जाता है उस प्रकार से वो लोग हैं। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक 13 नंबर श्लोक, अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। इसके में है नारद मुनि बता रहे हैं, इसलिए नारद मुनि एक्चुअली व्यासदेव को बता रहे हैं महाभाग मतलब परम भाग्यशाली, भवान अमोघ द्विज। एक तो नारद मुनि बता रहे हैं इनको व्यास देव को कि आप महाभाग हैं, मतलब भाग्यशाली हैं। अमोघ द्विक, अमोघ द्विक, द्विक मतलब दृष्टि, अमोघ मतलब जो कभी भी फेल नहीं होती है, मतलब सिद्ध दृष्टि जो हर वस्तु को देख सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकता है। शुचि श्रवा सत्य रतो धृतव्रतः, आप पवित्र भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं, सत्य के व्रत को पालन करने वाले हैं, आध्यात्मिक गुणों में भी स्थित हैं। उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्त ये, उरुक्रम मतलब अलौकिक कार्य करने वाले, अखिल बंध मुक्त ये सारे संसार की मुक्ति के लिए समाधि के द्वारा बार बार भगवान की लीलाओं को ध्यान करो और भगवान की लीलाओं का ध्यान करके उसका वर्णन करो। अभी नारद मुनि ने आज्ञा उनको दी है। हे शूल व्यास देव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है, आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, आप अपने व्रत में दृढ़ हैं और सत्य में स्थित हैं, अतएव आप समस्त मनुष्यों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। भगवान की लीलाओं का कौन 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 व्यक्ति चिंतन कर सकता है, ये लक्षण इस श्लोक में नारद मुनि डिस्क्राइब करते हैं। वो व्यक्ति अमोघ द्विक सिद्ध दृष्टा होना चाहिए, सूची मतलब पवित्र होना चाहिए, सत्यव्रत सत्य के व्रत को पालन करने वाला, धृतव्रत आध्यात्मिक गुणों में स्थिर होना चाहिए, तब वो व्यक्ति भगवान के विषय में समाधि चिंतन कर सकता है। क्योंकि व्यासदेव तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, इसलिए नारद मुनि उनको बता रहे हैं कि आप भगवान की लीलाओं के विषय में चिंतन करिए। इसका तात्पर्य भी लंबा है, तो इसलिए हम बहुत तेज नहीं जा पाएंगे, बट चूंकि ये चैप्टर और इसके बाद वाला चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण भी है, ऑलमोस्ट हर तात्पर्य इम्पोर्टेंट है, इसलिए जितना भी कर पाएंगे उतना अच्छा है। जनसामान्य के स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है, वे अज्ञात के विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं जो न्यून अधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं और जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भवबंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। इसमें बता रहे हैं कि लोग सामान्यतः पढ़ना चाहते हैं, साहित्य पढ़ना चाहते हैं, परंतु उनकी जो ये पढ़ने की टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये भौतिक साहित्य विषय के साहित्यों से आजकल हम देखते हैं कि पूरा साहित्य किस प्रकार से भरा हुआ है। बहुत सारी मैगजीन्स, अलग अलग गंदे गंदे विचारों की मैगजीन भी आते हैं और लोग उसको पढ़ते भी हैं। बहुत सारी नॉवेल्स बनती हैं, फिक्शनल नॉवेल्स, ऑफेंसिव नॉवेल्स, बहुत सारी नॉवेल पढ़ते हैं, लोग उसको यूज भी करते हैं। तो इस प्रकार के साहित्य में लौकिक कविताएं हो सकती हैं, दार्शनिक कल्पनाएं हो सकती हैं, पर सब कुछ माया से प्रभावित होता है। तो इनको पढ़ने से किसी को कोई भला नहीं होता, व्यक्ति हमेशा फंसता रहता है माया के अंदर। इसलिए नारद मुनि वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यासदेव के लिए उपदेश देते हैं, जो ना केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान कराने वाला भी हो। श्री व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं, क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिपेक्ष में देखने में भली भांति प्रशिक्षित हैं। श्रील व्यास तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक विकास के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़वर्ती हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने के इच्छुक रहती हैं और व्यासदेव या नारद कर सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। तो इस पैराग्राफ में बताया है कि संसार के इतने सारे साहित्यों में कोई भी साहित्य लोगों के भला करने वाला नहीं है, एक्सेप्ट आध्यात्मिक ज्ञान का जो साहित्य है। वो सारे विश्व में सहस्त्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। अतएव वैदिक साहित्य, विशेष रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभीष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके, जिससे मानव नहीं बोल नीचे करी मानव शक्ति का प्रमुख अंश छीन होता जा रहा है। भगवद गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन व्यास देव द्वारा हुआ, और श्रीमद भागवत उन्हीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्त की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। अतएव श्रीमद भागवत पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा ख्यान व्यासदेव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों ना करे, ना तो भगवान के कार्यों को जान सकता है, ना उनका वर्णन कर सकता है। ब्रह्म संहिता इस प्रकार बताता है कि पंथाष्ट कोटि शतवत्स संप्रगम्य, जो ऐसे लोग हैं जो कि करोड़ों साल तक मन की गति से, वायु की गति से भ्रमण करते हैं, तभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। तो कोई कितने भी वर्षों तक चिंतन करे, पर भगवान को जानना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। भागवत के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि इस महान साहित्य में 5,000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी, वह अब सही उतर रही है। अतएव लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। व्यास जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दृष्टि शक्ति तथा पांडित्य के मामले में पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं, और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः श्रीमद भागवत वेदों के परम सिद्ध द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परिपूर्ण से लिटरेचर की आवश्यकता है, और संसार के लिटरेचर किस प्रकार से लोगों को ब्लाइंड कर रहे हैं, और आध्यात्मिक लिटरेचर भागवत लोगों की मदद करेगा। और भागवत लिखने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ऑलरेडी व्यास देव के अंदर वो क्वालिफिकेशन है, और व्यास देव जैसे भक्त उस ग्रंथ को लिख के जीवों की जो अपूर्ण इंद्रियां हैं, अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा भी उनको भगवत साक्षात्कार में सफल बना सकते हैं। इसके बाद अगले श्लोक में बताते हैं, भगवान से अलग जो भी वस्तुएं होती हैं उससे क्या होता है। तथोन्यथा किंचन यद विवक्षतः पृथक् दशस्तत्कृत ना कृत रूप नाम भी न कहिचित् क्वापि च दुस्थिता मति लभेत वाताहन वाताहत नौ विवास्पदम। श्री भगवान से तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी तरह आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। नारद मुनि बताते हैं कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के अलावा आप जो भी वर्णन करते हैं वो केवल मन को एजिटेट करेगा, आंदोलित करेगा। उसी तरह से जैसे कोई नाव अगर समुद्र में हो और उसका लंगर अगर जमीन पे नहीं फंसा है, तो नाव जो है अपने आप में एजिटेट हो जाती है समुद्र के अंदर। तो ये इसी तरीके का थीम हमने पहले भी पढ़ा है, जब हमने डिस्कस किया था कि इवन नेस्कर या आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया कि भगवान से संबंधित नहीं है तो भी वो शून्य जैसा होता है। वही थीम नारद मुनि इसमें बताते हैं। श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है। अतएव उन्होंने अनेक प्रकारों से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्तिमय सेवा। सकाम कर्म मतलब कर्मकांड, मीमांसा दो प्रकार की मीमांसा है, कर्म पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो एक मीमांसा फिलोसफी इस प्रकार से बताती है कि कर्म सबसे शक्तिशाली है, भगवान आते हैं तब भी उनको कर्म का फल भोगना होता है। इस प्रकार से अभी बहुत लोग इस तरह से मानते हैं, कृष्ण को भी पाप लगता है और राम को भी पाप लगता है। ये एक प्रकार की फिलॉसफी है जिसको कर्म मीमांसा बोला जाता है। उसके कुछ कुछ सिद्धांतों को शास्त्र में उपयोग किया जाता है, परंतु वो फिलॉसफी अपने आप में पूरी एग्जैक्टली 100% ठीक नहीं मानी जाती है। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न एक्चुअली कर्म मीमांसा फिलॉसफी में कर्म की महत्ता बताई गई है, परंतु लोग जब उसको पढ़ते हैं तो कर्म के आगे भगवान को छोटा समझ लेते हैं। वो लोगों की गलती होती है। तो वो नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कि अलग अलग जो शास्त्र हैं, जब तक वो भक्ति से संबंधित नहीं है तब तक वो मन को आंदोलित करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की भी संस्कृति की है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। श्रील नारद देव व्यास देव द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं, और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन कर लिए करने के लिए कह रहे हैं। प्रैक्टिकली नारद मुनि बोल रहे हैं, अभी तक जो आपने लिखा है वो सब तो ऐसे ही लिखा है, क्योंकि आपने अभी तक जो लिखा है वो लोगों के मन को एजुकेट करेगा। हम देखते भी हैं कलयुग में इस प्रकार से होता है। बहुत सारे लोग भगवत भक्ति स्वीकार नहीं करते क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के मार्ग शास्त्र में दिए गए हैं। तो नारद मुनि ने इसको बताया वेद व्यास को कि अभी तक आपने जो लिखा है उसमें यही सब गलतियां हैं, अभी आपको केवल भगवान के नाम रूप गुण लीला को बता। वस्तुतः तो भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं, वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। इसलिए श्री व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते। नारद मुनि बता रहे आपको और कुछ बनाना ही नहीं चाहिए था, केवल भागवत पुराण बनाना चाहिए था। अन्य किसी पुराण का संकलन ना करते क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें बहु देवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है। एक्चुअली देवताओं की पूजा इसीलिए भगवान गीता में भी मना करते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा सामान्यतः जो लोग करते हैं तो वो सोचते हैं कि देवता भगवान से इंडिपेंडेंट है या देवता भगवान की कॉम्पिटिटर है या हर देवता भगवान, लोग इस प्रकार से सोचने लगते हैं। तो इससे अलग अलग धार्मिक संप्रदायों का जन्म होता है। इसलिए देवी देवताओं की पूजा करने के लिए भगवान भगवत गीता में अप्रूव नहीं करते, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के इष्ट नहीं कर पाता। जो बहुत सारे देवताओं को समान समझते हैं वो कभी भी आत्म साक्षात्कार के लिए पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिकली नारद मुनि ने जो भी दियो इन्होंने लिखा वेद व्यास सबको रिजेक्ट किया और ये बोला कि केवल आपको ये लिखना चाहिए था कि भारत भगवान की लीलाओं नाम रूप गुण लीला का वर्णन करना चाहिए था, क्योंकि इवेंचुअली अगर केवल आपने वही किया होता तो लोगों के पास वही ऑप्शन होता, परंतु आपने इतनी सारी चीजें दी हैं तो लोग भक्ति की तरफ नहीं आते। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में जुगुप्सितम धर्म कृतेनु शासत स्वभाव रक्तस्य महाद्यतिक्रम यद्वाक्य तो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। ये क्लियरली नारद मुनि ने अभी डांट कर प्रारंभ किया है कि लोग ऑलरेडी इस संसार में भोग करने के लिए आए हैं। भौतिक संसार में जो भी आता है वो भोग करने की इच्छा से ही आता है, और आपने उनके भोग करने की इच्छा को धर्म का नाम देके अप्रूव कर दिया। और अप्रूव करना मतलब प्रोत्साहित करना है। तो आगे आने वाले लोग क्या बोलेंगे, व्यास देव ने तो हमें परमिशन दिया है तो अभी हम भोग कर सकते हैं। इसलिए आपने जो किया वो बहुत घृणित कार्य है और बहुत अनुचित कार्य है। और चूंकि आप सभी के लीडर हैं, लोग बोलेंगे, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और इस प्रकार की चीजों को करेंगे धर्म के नाम पे। और सामान्यतः जिनको भोग करने की इच्छा होती है, उनको आपने लिखा भले ही है निषेध, डोंट्स लिखा है, परंतु लोग डोंट्स की परवाह नहीं करते। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि बलि करते समय यज्ञ करना चाहिए और फिर उसको अमावस के दिन करना चाहिए, बहुत सारे नियम दिए हैं, परंतु कितने लोग उसको पालन करते हैं? खुलेआम बलि बलि करते हैं बिना कोई नियम को पालन करें। तो नारद मुनि वही बता रहे थे कि लोगों में भोग की इतनी ज्यादा इच्छा है कि कुछ समय बाद वो क्या है कि किस प्रकार से करना चाहिए वो सब नियम भूल जाएंगे, वो केवल भोग करेंगे। इसलिए ये आपने जो किया ये घृणित कार्य किया है। तो उपाध्याय जी ने अच्छा तात्पर्य लिखा है इसमें। श्रील नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्रील व्यासदेव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालिक भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुत्ता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं हो पाता। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बद्धी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सु अवसर होता है। अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। श्रील व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप हैं, अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भव बंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ, तो स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशु वध करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। नारद को इसका पूर्वाभ्यास हो गया था, अतएव उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ है। हमने जो डिस्कस किया वही इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लोग धीरे धीरे उसका उद्देश्य भुला देते हैं और केवल कसाई खाने जैसा उसको उपयोग करते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मणों से या ठीक तरीके से वेदों की व्याख्या सुनना नहीं चाहते। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता ना तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, ना धन संचय करने, ना संतति बढ़ाने में है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। निस्संदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में ही भगवद गीता सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवद गीता के इस चरम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे। महाभारत के अंदर भगवद गीता दिया हुआ है और ऐसे ऐसे समय पे दिया है कि लोग सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगे उस समय पे, क्योंकि लोगों को युद्ध लड़ाई लड़ाई देखना बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम देखते हैं कि रोड पे भी अगर कोई लड़ाई होती है तो 2 लोगों की लड़ाई होती है, परंतु 100 लोग देखते हैं चारों तरफ से खड़े होकर। लोग अपने घरों से निकल निकल के भी देखते हैं। तो सामान्यतः लोग लड़ाई देखने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, किसने किसको मारा, क्या हुआ। तो व्यासदेव ने भी उस तरह से किया। जब महाभारत युद्ध जस्ट चालू होने वाला है उसी समय भगवद गीता को उसमें रखा, तो ऐसी पृष्ठभूमि थी कि लोगों का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा और वो उसी कंसंट्रेशन में वो गीता को पढ़ लेंगे। तो महाभारत का सबसे ऊंचा उपदेश भगवद गीता के रूप में है और मनुष्य को चाहिए कि भगवान के चरणों को स्वीकार करे। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है और मुख्य विषय अर्थात भगवद गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद व्यास देव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करे कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब भगवान के शरण में जाना है। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्रायः उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने के ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से परांगमुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पथ तक ऊपरी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक के पथ पर लगे हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं होती। क्लियरली नारद मुनि यहाँ पे अभी व्यासदेव अपने शिष्य को डांट रहे हैं कि आपने क्या गलती की है और उस गलती को सुधारने के लिए अभी आपको भागवत को लिखना चाहिए, भगवान के नाम रूप गुण लीला का अभी आपको वर्णन करना चाहिए। तो किसी को कोई प्रश्न पूछना है? अगर प्रश्न पूछना है तो या तो वे हाथ उठा सकते हैं या अनम्यूट कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अनम्यूट कर पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण बाबू दादा प्रणाम।
हरे कृष्ण,
आवाज आ रही है?
हाँ आवाज आ रही है।
एक तो मीमांसक के बारे में आपने कहा ना, मीमांसक के बारे में, तो जो मीमांसक का एक प्रकार से तो भगवान के प्रति अपराध हुआ उसको पढ़ना या उसके बारे में सुनना है जानना।
एक्चुअली षट दर्शन में
सामान्य ज्ञान के लिए भले देर के निकल नहीं देखे तो भगवान के प्रति अपराध हुआ क्योंकि भगवान को गुण मनाया गया।
हाँ, मीमांसा फिलोसफी जो है वो कर्म को श्रेष्ठ मानती है, उसमें एक्चुअली केवल वो ही सिद्धांत नहीं है। मीमांसक शास्त्रों में एक और इम्पोर्टेंट प्रमाण है जो कि गौड़ीय संप्रदाय में उपयोग किया जाता है मीमांसा फिलॉसफी में, एक होता है शास्त्रों में बल अतिबल का विचार करना। बल अतिबल मतलब जैसे मान लो दो इंस्ट्रक्शन है शास्त्रों में और दोनों इंस्ट्रक्शन थोड़े कॉन्ट्रोडिक्टरी लग रहे हैं, एक दूसरे के अलग जैसे लग रहे हैं, तो अभी उसमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन किस समय पर यूज करना चाहिए, इसके पीछे एक लॉजिक होता है बल अतिबल विचार। उसमें बहुत सारे पोस्ट फॉर्म, बहुत सारे पोस्टुलेट्स होते हैं और वो मीमांसा फिलॉसफी में दिया है। तो इवन जीव गोस्वामी ने भी अपने संदर्भों में उस फिलॉसफी के इस सिद्धांत को यूज किया है कि कभी कभी शास्त्रों में हमें समझ में नहीं आता है कि दो अलग अलग तरीके के गाइडेंस रहते हैं, तो उसमें से कौन सा गाइडेंस किस समय पर यूज किया जाए। तो मेनली मीमांसा फिलॉसफी के उसी पार्ट को यूज किया जाता है, वैष्णव आचार्यों ने यूज किया उसको, कुछ कुछ जगह पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी उपयोग किया, परंतु एज सच मीमांसा फिलोसफी को वैष्णव उपयोग नहीं करते हैं। हालांकि वो षट दर्शन में आती है परंतु उसमें कर्म की सुपीरियरिटी बताई गई, भगवान की सुपीरियरिटी इस प्रकार से नहीं बताई गई।
जैसे कि अभी आपने हंस का उदाहरण दिया था, मतलब जो अपने काम का है वो उसमें से ले सकते हैं।
हाँ, उस प्रकार से देख सकते हैं, नहीं तो वैष्णव को मीमांसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। समाज में लोग पढ़ते हैं क्योंकि षट दर्शन में है वो, तो जो स्कॉलर्स होते हैं जो पीएचडी करते हैं वो सब उसको पढ़ते हैं, इसलिए वो लोग कई बार भक्त भी नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो कर्म को महत्ता देते हैं। ओके, अभी एक क्वेश्चन है चैट में है कि नारद मुनि व्यासदेव को इतना डांट रहे हैं कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी गई है, तो क्या व्यासदेव ने सबसे बड़ी गलती की थी? क्या व्यासदेव ने सही में इतनी बड़ी गलती की थी कि उन्होंने अलग अलग वैदिक लिटरेचर अलग अलग लोगों के लिए लिखा, और क्या व्यासदेव को सीधा भागवतम लिखना चाहिए था? तात्पर्य में इस प्रकार से आया है कि व्यासदेव को सीधा भागवतम लिखना चाहिए था, परंतु साथ में यह भी समझना होगा कि कलयुग में जो लोग हैं वो कई बार डायरेक्ट शुद्ध भक्ति को स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं, तो वो सोच के इस प्रकार से लीला हुआ। तो नारद मुनि उस डिफेक्ट को बता रहे हैं क्लियरली कि इतने सारे ऑप्शन देने से लोगों को लॉस हो सकता है, लॉस होगा। अगर आप केवल भगवत भक्ति को बताते तो लोग उसको स्वीकार करते, और एक्चुअली वो है भी, अगर केवल श्रीमद् भागवत या शुद्ध भक्ति को दिया जाए तो कुछ लोग स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु वो तब भी उसके आगे आने का प्रयास तो करेंगे, उस रास्ते करेंगे। तो इस प्रकार से व्यासदेव की मिस्टेक बता रहे हैं। बट साथ साथ चूंकि भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा से परीक्षित महाराज की मृत्यु हुई, भगवान की इच्छा से व्यासदेव लिख रहे हैं, व्यासदेव खुद भगवान के इनकार्नेशन भी है, तो भगवान उस प्रकार से चाहते थे, क्योंकि कलयुग में लोग सभी लोग शुद्ध भक्ति की तरफ पहली बार में आकर्षित नहीं होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग एक छोटा रास्ता, लंबा रास्ता दिया जाता है, धीमा रास्ता दिया जाता है और फास्ट रास्ता भी दिया जाता है। ओके श्याम सखा प्रभु, आप बहुत और भी प्रश्न है।
जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक प्रभु जी, एक शंका थी। हरे कृष्ण, आवाज आ रही प्रभु जी?
हाँ
प्रभु जी, एक ये समस्या,
आवाज आ रही।
जैसे हम लोगों से पिचिंग भी करते हैं, बताते भी है, तो वो लोग जैसे आपने समझाया ना कि वही दिक्कत आती है कि सारे भगवान तो एक जैसे हैं, मतलब वो सभी को समान लेवल पे चलते हैं। वहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है प्रसाद की, मतलब हर किसी के जो भी देवता है उनका प्रसाद ग्रहण करो, ये करो, लेकिन हम लोग तो स्किप करना पड़ता है उस चीज को, लेकिन ये बड़ी समस्या आती है, जिससे अपन कैसे उसको मैनेज करें उस चीज को। हमारे घर में भी कभी बताया, मतलब जैसे अभी
एक्चुअली
जी बिल्कुल,
अगर इंडिविजुअल लेवल पे है या घर पे होता है तब तो उनको तो ये व्यास देव नारद का संवाद हम बता सकते हैं भागवत में से, क्योंकि जो इसको पढ़ेगा और सुने और किस प्रकार से वेदों की रचना की गई, वेदों की रचना का एक पर्पज था, अगर कोई देवताओं को भी मानता है, जैसे प्रभुपाद से एक बार पूछा गया था कि भारत के देवताओं को मानना ज्यादा अच्छा है कि कुरान या बाइबल के एक भगवान को मानना ज्यादा अच्छा है, प्रभुपाद ने बोला था कि सनातन धर्म के देवताओं को मानना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देवताओं को मानने से कम आप वैदिक धर्म को पालन करेंगे, जबकि जो बाइबल और कुरान है वो एक्चुअली मांसाहारियों के धर्म है, रिलीजियंस ऑफ द मीट ईटर्स, इस प्रकार से प्रभुपाद ने बताया था। तो ये स्टोरी अगर लोगों को बताएंगे तो उनको पता चलेगा, क्योंकि देवता और भगवान ये दो अलग अलग शब्द संस्कृत में तो अलग है, तो भारत इंग्लिश भाषा में दोनों को सेम बोला जाता था, इसलिए लोगों को लगता है कि दोनों एक ही है, तो वो वास्तविकता उनको बताना चाहिए कि देव और भगवान एक नहीं है, और उसमें हम गीता के उस उपदेश भी बता सकते हैं, ये वाला सेक्शन भी बता सकते हैं, नारद व्यास संवाद, जितने लोग समझेंगे तो समझेंगे। सामान्यतः लोग ये बोलते हैं कि इस्कॉन वाले अपना प्रचार करने के लिए ऐसा बताते हैं, बट उनको भगवद गीता में से श्लोक बताएंगे, भागवत में से बताएंगे, तो उनको समझ में इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र बोलते हैं।
वो तो प्रभु जी सभी को पता है कि इसको बिना शास्त्र के कोई बात ही नहीं करता। जी प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण।
ओके, कोई और प्रश्न नहीं है? हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं वैष्णव उसके लिए, नेक्स्ट फ्राइडे को 7:30 बजे 7:45 पे मिलेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जय, गॉड प्रेमानंद।